ग्रंथाश्रमद्भागवतम् स्कंद 3 अध्याय 12 अध्याय का शीर्षक है कुमारों तथा अन्यों की सृष्टि श्लोक संख्या 28। वाचं दुहितरं तन्मे
बड़ा से बड़ा विद्वान भी काम वासना का शिकार बन जाता है।
ब्रह्मा अपने ही पुत्री के प्रति कामासक्त थे, अतः उनके इस अनियमितत्व को बदलाने में मैत्रेय खिंचक रहे थे। फिर भी उन्होंने इसका उल्लेख किया, क्योंकि कभी कभी ऐसा घटित हो ही जाता है और इसके जीवंत उदाहरण स्वयं ब्रह्मा है। यद्यपि वे आदि जीव है और संपूर्ण ब्रह्मांड में सबसे अधिक विद्वान है, यदि ब्रह्मा जी काम वासना के शिकार हो सकते हैं तो अन्यों के विषय में क्या कहा जाए। हम सबके लिए जो अनेक अनेक संसारी दुर्बलताओं के प्रति उन्मुख है, ब्रह्मा की यह असाधारण अनैतिकता किसी विशेष कल्प में घटित हुई सुनी गई थी, किंतु ये उस कल्प में नहीं घटित हो सकती थी जिसमें ब्रह्मा ने भगवान से प्रत्यक्ष रूप से श्रीमद् भागवत के 4 श्लोक सुने थे, क्योंकि भागवत का उपदेश देने के बाद भगवान ने ब्रह्मा को यह वर दिया था कि वे किसी भी कल्प में मोहित नहीं होंगे। इससे यह सूचित होता है कि श्रीमद् भागवत सुनने के पूर्व वे ऐसी काम वासना के शिकार हुए होंगे, किंतु भगवान के मुख से भागवत सुन लेने के बाद ऐसी त्रुटि होने की कोई संभावना नहीं। तो ये तात्पर्य बहुत सरल है और समझ में आने योग्य है। फिर भी मनुष्य को इस घटना को और गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। मानव एक सामाजिक पशु है और स्त्रियों के साथ अनियंत्रित मेल जोल से उसका पतन हो जाता है। पुरुष तथा स्त्री की ऐसी सामाजिक स्वतंत्रता विशेष रूप से युवा वर्ग में नीचे ही आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग में महान अवरोध है। बहुबंधन एकमात्र यौन संबंध के कारण है, फलतः पुरुष तथा स्त्री की अनियमित संगति अवश्य ही आध्यात्मिक प्रगति के मार्ग में महान अवरोध है। मैत्रेय ने ब्रह्मा का एक उदाहरण इस भीषण खतरे के प्रति हमारा ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रस्तुत किया। ओम अज्ञान दिविरांधस्य ज्ञानांजनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदामयं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। पांचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदी गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। वाचम बहितरम तन्मे स्वयं भूहरति मनः अकामा चतमे क्षतः सकाम इति नाशुतम्। तो श्रील प्रभुपाद ने यह हमें दिया है श्रीमद् भागवतम, केवल भागवतम देकर छोड़ा नहीं बल्कि हमें कहा भागवतम की रोज सेवा करो। कैसे सेवा करो? नित्यम भागवत सेवया। तो मैं जब ये सेवया शब्द सुनता हूं तो मुझे सेवया की खीर याद आती है। आपको आती किसी को? तो हमारी बुद्धि सदैव कहां भागती है? इंद्रिय भोगों की ओर। तो लेकिन जहां व्यासदेव कहते हैं कि भागवत की सेवा करनी होगी उचित रूप से, और भागवत की सेवा क्या है? एकाग्रता से कंठ को ऊपर करके क्या करना? सुनना। इस संसार में कुछ हम ना करें कोई परवाह नहीं है, भागवतम के संदेश के प्रति अटेंटिव हो जाए वही हमारे जीवन की सफलता है। इसलिए प्रभुपाद कई तात्पर्य में कल पढ़ रहा था जिसमें प्रभुपाद कहते हैं कि मैंने अपना घर आदि छोड़ दिया था केवल भागवतम के कारण। पहले स्कंद के तात्पर्य में लिखते हैं कि भागवतम को समझने के लिए और भागवत का प्रचार करने के लिए मैंने अपना ग्रह आदि का त्याग कर दिया था। तो इसलिए श्रीमद् भागवतम को केवल साधारण नहीं लेना है हमें, भागवतम सबसे महत्वपूर्ण धरोहर है हमारे जीवन की। हाँ, क्योंकि भागवतम सब कुछ बोलता है, इसलिए आचार्यगण कहते हैं कि भागवतम ही केवल हमारा एकमेव मित्र है, और मित्र कोई छुपाता नहीं है चीज, वो दोनों चीजें बताता है, क्या खतरे हैं, आपकी प्रशंसा भी करेगा, बीच बीच में आपको थोड़ी थप्पड़ भी मारेगा और आपकी आंखों को भी खोलेगा। तो कोई कह सकता है कि भागवत में इतनी सब काम वासना स्त्रियों की पुरुषों की यौन आदि की इतनी सारी चर्चाएं हैं, ये इसलिए है क्योंकि भागवतम वो सुहृद है, मित्र है, क्योंकि कृष्ण स्वयं भगवद गीता में कहते हैं सुहृदं सर्वभूतानां, मैं सब जीवों का मित्र हूं, और भागवतम कौन है, साक्षात कृष्ण है। कृष्णे सुधाम भगते धर्म ज्ञानादिवि सह नष्ट कलो दृशामेश पुरानो अर्को अधुना उदितः। जब कलयुग के जीवों का कलयुग के अंधकार से दृष्टिहीन हो गए जीव, इसलिए भागवत रूपी सूर्य जो कृष्ण है साक्षात, वो उदित हो जाता है। और भागवत क्या करता है, हमें सावधान कराता है, और हमें जो खतरे आने वाले हैं आध्यात्मिक प्रगति में, जो जो गतिरोधक है, बाधाएं हैं, अवरोध है, उनको हमें स्मरण कराता है और सिखाता है क्या, किप डिस्टेंस। जब मैं हमेशा ट्रक देखता हूं तो ट्रक के पीछे हमेशा लिखा होता है, क्या लिखा होता है, किप डिस्टेंस। तो तुरंत याद आता है भागवतम की कि हमें अंतर रखना होगा स्त्री और पुरुष को, अंतर रखो, ये नहीं कि वो गाड़ियों के बीच का अंतर है, वो बोला गया है अभी ट्रक के पीछे थोड़ा सा डिस्टेंस रख के खड़े हो जाओ, नहीं, ये जो अनियंत्रित जो मेल जोल है उसमें अंतर रखो। तो ये जो श्रीमद् भागवतम का श्लोक है इसमें विशेष रूप से वर्णन आया है ब्रह्मा के बारे में, बल्कि ब्रह्मा ने सब इतने सारे अलग अलग चीजों की सृष्टि कर दी। इससे पहले हमने सुना ब्रह्मा बहुत पावरफुल पर्सनालिटी है, भगवान क्या करते हैं कभी कभी पावरफुल व्यक्ति को के माध्यम से हमें क्या करते हैं, सिखाते हैं। तो भगवान के समान ही पावरफुल है ब्रह्मा, इसलिए ब्रह्मा को कभी कभी भगवान भी बोलते हैं, शिव को भी भगवान शब्द यूज करते हैं। हाँ देखो, हम सोचते हैं, हमेशा उदाहरण देते हैं कि भगवान जो विष्णु है उनको किसी स्त्री की आवश्यकता नहीं पड़ी किसी को जन्म देने के लिए, उनके नाभि से कमल आया और एक पुत्र ने जन्म लिया। लेकिन ब्रह्मा का सोचो वैसे ही है, उनके तो नाभि से कमल आया, ब्रह्मा सोचते तो कोई जन्म लेता है, उनके अलग अलग अंगों से कितनी चीजें जन्म ले रही है। तो ब्रह्मा कोई साधारण जीव नहीं है, इसलिए प्रभुपाद इस तात्पर्य में लिखते हैं आदि जीव है, सबसे अधिक विद्वान है, सबसे बलवान पर्सनालिटी है, जिसको भगवान ने माध्यम बनाया और हमें विशेष 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 शिक्षा प्रदान की। तो ये जो भागवतम है या ये जो श्लोक है आज का, बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके द्वारा हम अपने पर्सनल जीवन में कई सारी शिक्षाएं ले सकते हैं और समझ सकते हैं कि जो ये भौतिक काम है, काम वासना, काम विकार है, उसके परिणाम कितने डेंजर है, खतरनाक है, और कैसे उस काम को हम वश में कर सकते हैं, उससे उसके प्रभाव से हम मुक्त हो सकते हैं। तो ये सब चीजें है इस श्लोक में प्रभुपाद देखते हैं, बल्कि श्लोक में एक शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है, मैं जब सुबह पढ़ रहा था तो वहां लिखा स्वयंभू हरति मनः, स्वयंभू का मन को क्या कर लिया, हरण कर लिया इस भोग करने के विचारों ने। तो ऐसे ब्रह्मा का मन भी हरण हो सकता है काम के विकारों, काम भोग के प्रति, तो हम किस खेत की मूली है, ऐसे कहते ना, आप किस खेत की मूली हो। हाँ, लेकिन हमें अपने थोड़े से विद्वत्ता पर, योग्यता पर, सेवाओं जो हम करते हैं, हम घमंडित हो जाते हैं और हम सोचते हैं कि अभी मैं क्या हूं, सफल हूं, अभी मैं बिल्कुल स्ट्रांग डिवोटी हूं,
मेरे साथ ये नहीं होने वाला, ये वैसे ही है जैसे हमें लगता है मृत्यु मुझे नहीं है बाकी सबको है, हार्ट अटैक मुझे नहीं होना होगा सबको होगा। युधिष्ठिर को जो प्रश्न पूछा था कि आचार्य, उसी प्रकार आप सोचते हैं ये जो भौतिक आकर्षण है वो सबको सबको है बाकियों को होगा, ये भक्त अट्रैक्ट हो सकता है लेकिन मैं अट्रैक्ट नहीं होने वाला, मैं तो बहुत अच्छा भक्त हूँ, मंगल आरती सबसे पहले पहुंचता हूँ, आज तो कोई मिस नहीं की मैंने, भागवत में सबसे आगे बैठता हूँ, प्रसाद में सबसे पीछे होता हूँ। हाँ, चाहे जो मर्जी आपकी योग्यता, माया इन सब चीजों को देखती नहीं। हाँ, माया तो बस लुफ हो देखती है छोटा सा और उससे घुसती है और विशाल रूप धारण करती है और फाड़कर बाहर आ जाती है, पता भी नहीं चलता। तो वैसे ही भगवान भगवत गीता में भी कहते हैं यततो हि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चिता इंद्रियाणि प्रमादिनी हरन्ति प्रसभम मनः। प्रसभम मीन्स जो विवेकवान व्यक्ति है, विवेकशील व्यक्ति कौन है, जिसको पता है क्या उचित है क्या अनुचित है, जिसमें भेद कर सकता है, ऐसा विवेकशील व्यक्ति के मन को भी ये इंद्रिया क्या करती है, हरंती, उसको इतनी शब्द आता है झकझोर कर देना, पकड़ के आप खिलाते हो किसी को ना इसे दोनों हाथों से झकझोर कहते हो उसे। तो ये इंद्रिया ऐसी है वो पूरा हमें झकझोर कर देती है, हिला के रखती है। हाँ, कितना ही कोई विवेकवान बुद्धिमान व्यक्ति क्यों ना हो, इसलिए भगवान आगे कहते हैं इंद्रियाणाम हि चरता यन मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञा वायुर नाम विमानसी। भगवान कहते हैं जिस प्रकार से वायु नाव को एक ओर ले जाता है, इंद्रियाणाम हि चरता, हमारा जो मन किसी इंद्रिय पर जब लग जाता है ना उसके बारे में सोचता है तो उसका हरण कर लेती है वो इंद्रिय और इंद्रिय विषय। जिस प्रकार से बलवान वायु नाव को हर लेता है, इसी कारण से प्रभुपाद ने तात्पर्य की जब शुरुआत की श्लोक की, सबसे प्रमुख श्लोक लिखा, सबसे पहले लाइन किसी और शब्द से शुरू नहीं की, प्रभुपाद ने लिखा बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान समपि कर्षति। ये इंद्रिया क्या है, बहुत बलवान है, तो जो विद्वान व्यक्ति को भी आकर्षित कर देती है। तो इसलिए कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं आकर्षित नहीं होने वाला। अरे हमारा कितना किलो वेट है, कितनी हाइट है, जहां बड़े बड़े ब्राह्मण विद्वान, मैं सोच रहा था कि कितने बड़े बड़े लोगों ने घुटने टेके इसके सामने, इसमें मैं सोच रहा था, मैंने कहा इतने बड़े बड़े लोगों ने घुटने टेक दिए। हाँ, सबसे पहले तो ब्रह्मा का उदाहरण आया, अब उसके बाद देवों के देव महादेव कौन है, शिवजी। हाँ, शिवजी के कारण ही ये जो कामदेव है उसका नाम अनंग पड़ता है, अनंग मीन्स शरीर रहित। जो ये कामदेव है ये सबको आकृष्ट करता है, तो ऐसे शिवजी भी आकृष्ट हो जाते हैं। सती ने जब शरीर छोड़ा तो कामदेव शिवजी के पीछे हाथ धोकर लगा, शिवजी आगे भाग रहे कामदेव पीछे, क्योंकि कामदेव अपने हाथों में कैसे भागता है, बांध लेकर भागता है, और काम का जब बांध लग जाता है तो व्यक्ति घायल होके गिर जाता है। तो कामदेव पर्सनैलिटी है, वही कामदेव प्रद्युम्न के रूप में भगवान के पुत्र के रूप में प्रकट हुए थे द्वारका लीला में। तो ऐसे कामदेव के हाथ में बांध रहता है और वो ढूंढते रहते हैं। हाँ, जब विशेष रूप से हम यंग होते हैं उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि हम यंग है या वृद्ध है, काम कभी भी हमें घायल करता है। और कामदेव के हाथ में बांध होता है, वो बांध गन्ने का जो गन्ना होता है ना उसका उससे बना होता है, और उसकी जो रस्सी है वो मधुमक्खियों से बनी होती है, स्ट्रिंग जो रस्सी है, और उसके पास पांच पान होते हैं, और वो पांच पान पांच प्रकार के फूलों से बने होते हैं। और जब देखते क्या रे ये भक्त, पहले वो बाण चलाते हैं, और पहला बाण कहाँ लगता है, हृदय में लगता है, कहाँ लगता है, हृदय में। इसलिए प्रभुपाद लिखते हैं कि ये जो काम है ये हृदय रोग है। कौन सा रोग है? हार्ट डिजीज। मैं जब भक्तों की देखभाल करता था दिल्ली में 10 साल पहले, ब्रह्मचारी बीमार हो जाए तो उनको डॉक्टर के पास ले जाना, देखभाल करना, उनकी केयर। तो एक वक्त वैसे बीमार हो गई, उनको ऐसे बहाने मार रहे थे, बीमार हो। मंगल आरती के समय जाता था, प्रभु उठो मंगल आरती जाना है, प्रभु जी बीमार हो। मैंने कहा क्या हो गया? कहते हार्ट डिजीज, हार्ट दर्द हो रहा है आजकल। तो मैं कई सारे डॉक्टर्स के कांटेक्ट में था, तो डॉक्टर्स के पास हमेशा ले जाता था, हफ्ते में 3-4 बार। इतने सारे 100 डिवोटीज, तो हफ्ते में 1-2 तो हमेशा बीमार। तो मैंने कहा ठीक है। तो एक महीने तक वो बहाने मारते रहते थे कि हार्ट का प्रॉब्लम चल रहा है, मेरे दिक्कत है, बीमार हूँ। तो मैं डॉक्टर के पास ले गया, अमरपाल में वहाँ एक डॉक्टर है, आज भी मुझे याद है, उनके पास ले गया। बहुत क्लोज थे वो डॉक्टर। मैंने कहा प्रभु हमारे बहुत दिनों से बीमार है और 9 बजे तक बीमार रहते हैं और उसके बाद बिल्कुल ठीक, चंगा, बिल्कुल ठीक रहते, पूरे दिन जाएंगे, फंड रेज करेंगे। उनका सेवा रहता था फंड रेजिंग, और जाते थे कहाँ कहाँ लोगों से मिलना, बड़े लोगों से, सो मरे, बहुत सारी चीजें। फिर शाम को आके, फिर सुबह जब मंगल आरती का समय होता था, मैं जाता था, प्रभु जी मंगल आरती, प्रभु जी दर्द हो रहा है। तो डॉक्टर को मैंने कहा ये भक्त मुझे हमेशा बोलते रहते हैं। उनको बिठाया साइड में और डॉक्टर ने मुझे कहा आप अंदर आ जाओ तो बात कर लें हमसे। तो मैंने कहा ठीक है बताए। तो उन्होंने कहा हृदय का रोग एक तो होता है 18 साल में और होता है 80 साल में, तो आप समझो इनको कौन सा हृदय रोग है। तो इस प्रकार से ये हृदय रोग है जो कामदेव के द्वारा चलाया गया जो बाण है हमें बिंद देता है। तो ऐसे कामदेव 5 प्रकार के फूलों से उनके बाण होते हैं, वो फ्लावर्स हैं। अरविंदम अशोकम च श्रुतम च नम मल्लिका निलोत्पलम च पच्चेते पंच बाणस्य सायका। तो पहला बाण अशोक फ्लावर है, फिर नीला कमल है, सफेद कमल है, मल्लिका है, और मैंगो ट्री के जो फ्लावर्स आजकल आ रहे हैं ना, मैंगो आते हैं, तो उससे है। तो पहला बाण जब चलता है उसका नाम है उन्माद। उन्माद वो बाण है जो हृदय में लग जाता है और व्यक्ति क्रेजी हो जाता है, क्रेजीनेस शुरू हो जाता है। और दूसरा बाण तापन, उसके लिप्स, वो कहाँ छोड़ते हैं वो बाण? कामदेव लिप्स पे। लिप्स से क्या होता है? व्यक्ति लेमेंट करने लगता है, शोक, अरे वो मुझे छोड़ के चले गई, या फिर उसके प्रति आकर्षण हो रहा है। तो व्यक्ति अपनी उद्गार कहां से बोलने लगता है? लिप्स, उसकी स्तुति करेगा, उसके बारे में चर्चा करेगा, और कुछ नहीं तो फिर उसके विरह में होठों से क्या करेगा? रोना शुरू करेगा, रोदन। तो ये दूसरा बाण यहां से चलता है, वो छोड़ते सीधा लिप्स पर, उसको तापन कहते हैं, तपने लगता है व्यक्ति। और तीसरा बाण है शोषण, अब वो चलाते कहा? आईज में, आंखों में शोषण, शोषण किया जाता है कामदेव के द्वारा, फिर आंखें लाल हो जाती है क्योंकि निद्रा उसके जीवन से खत्म हो जाती है, नींद नहीं आती, केवल उसका स्मरण होने लगता है। तो ये सब पुराणों में वर्णन है, भागवतम में है। और जो चौथा बाण है स्तंभन, स्तंभन को जब चलाते हैं कामदेव सीधा हेड, दिमाग, बुद्धि को पूरा खत्म कर देते हैं उसकी। हाँ, बुद्धि फिर काम करना हरकती, उसका बुद्धि काम नहीं करता। हाँ, सर बिल्कुल खत्म हो जाता है और माइंड पागल हो जाता है। और पांचवा बाण है जिसको कहते हैं सम्मोहन। सम्मोहन का मतलब है अभी कुछ नहीं बचा उसके पास। कामदेव ने क्या कर दिया? उसको पूरी तरह से पागल कर दिया। तो इस प्रकार से कामदेव सबको आकृष्ट करता है इस भौतिक संसार में, और हर व्यक्ति उसके सामने अपने क्या करता है? घुटने टेक देता है, शरण ग्रहण करता है। तो ऐसे शास्त्र कहते हैं कि ये जो काम है वो बहुत प्रभावशाली है, क्योंकि भगवान की जो दैवी शक्ति है महामाया, उसका ये सबसे प्रभावशाली अस्त्र है किसी जीव को इस संसार में बांध के रखने के लिए। इसलिए इस संसार का नाम भागवतम के पांचवें स्कंध में आता है मैथुन आगार, कि यह मैथुन के श्रृंखला से जीव को बांध के रखा है। बल्कि यह श्रृंखला, ये चैन दिखाई नहीं देती है, ये आकर्षण ऐसा है, ये जेल ऐसी बनी है कि जिसमें कोई दीवार नहीं है, कोई रस्सियां नहीं है, कोई डिवाइसेस नहीं है जिसके द्वारा आपको कंट्रोल किया जाए। बल्कि 1930 और 40 में अमेरिका में, कैलिफोर्निया में जो आइलैंड होते थे, वहां ऐसे ऐसे जेल बनाए गए थे पानी के बीच में, और उसके चारों ओर हजारों शार्क हुआ करती थी, मछलियां बड़ी बड़ी, और उनको ब्लड डाला जाता था पानी में, क्योंकि वो मछलियां क्या करे, कोई कहीं भी भागे तो उसको खा ले। और इतना ही नहीं, बड़े बड़े तारे लगाए गए थे, हर मीटर में एक एक व्यक्ति खड़ा किया था वो जेल के बाहर, लेकिन फिर भी वहां से कैदी सुरक्षित भाग के चले जाते थे। हाँ, लेकिन ये जो भौतिक संसार रूपी जेल है, इसमें कोई चैन नहीं है, कोई दीवारें नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं, जेल में बने रहना चाहते हैं, है ना। हम सोचते हैं संसार 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 से परेशान, लेकिन शाम को वापस घर में जाएगा, मंदिर नहीं आएगा, क्या अभी बहुत परेशान हूं, बस मानस देह जो किचु और आज राजा गोविंद देव आपके पास ही रहूंगा, बस आज जाऊंगा नहीं हफ्ते के लिए। लेकिन नहीं, हम कहां जाना चाहते हैं, जेल में रहना चाहते हैं, जेल में ही बने रहना चाहते हैं। तो इस प्रकार से ये जो काम है, सबसे बड़ा व्यक्ति ब्रह्मा को भी आकर्षित करता है, वही नहीं देवादि देव शिवजी भी हैं। शिवजी ने जब सुना कि भगवान ने अपना मोहिनी रूप धारण किया है, शिवजी को लगा पार्वती के साथ चल रहे थे, उन्होंने कहा मुझे देखना है ऐसा स्वरूप। भगवान विष्णु ने कहा अरे शिवा, शिवजी के बहुत क्लोज फ्रेंड है विष्णु, कहा नहीं नहीं मत देखो ना, मैं कहता हूं मत देखो, वैसे कोई भक्त हमें बोलते हैं प्रभु अभी बस बहुत हो गया, अभी क्या करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन शिवजी ने सुना नहीं, शिवजी कहते नहीं मैं प्रभावित नहीं होऊंगा। ये वही चीजें हम सबके लिए लागू होती है। शिवजी ने कहा एक बार भी चांस नहीं लेना है माया के साथ। प्रभुपाद ने कहा कि मेरे जो भक्त है वो माया से डरते नहीं है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, प्रभुपाद कहते हैं हम वो डरते नहीं है। इसलिए प्रभुपाद जब लंदन में प्रार्थना तो डेटिस के सामने खड़े होकर हाथ जोड़ के कुछ बोल रहे थे, तो तमाल कृष्ण महाराज जाके प्रभुपाद के कान में पूछते हैं प्रभुपाद आप क्या प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभुपाद ने कहा मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ कि कृष्णा आप मुझे मेरी माया से क्या करो, रक्षा करो। प्रभुपाद कहते मेरे भक्त डरते नहीं है, ये प्रभुपाद सिखाना चाहते थे। तो इस प्रकार से हमें एक छोटा सा चांस भी नहीं लेना चाहिए, माया छोटी है या बड़ी है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे जो शिवजी हैं उन्होंने सोचा कि मुझे एक बार देखना है, भगवान तो मना कर रहे थे, लेकिन फिर शिवजी जब तैयार हो गए तो भगवान प्रकट हो गए विष्णु मोहिनी रूप में, जो सारे जगत को मोहित करते हैं। विष्णु मोहिनी रूप में जब उनके सामने गेंद को उड़लते हुए ऐसे खेल रहे थे, शिवजी देखकर ही अत्यधिक आकृष्ट हो गए, वो भूल गए मेरे साथ पार्वती खड़ी है। पार्वती देखने लगे क्या हो गया इसको, मेरे पति देव को भाग रहे उसके पीछे, और भगवान भाग रहे आगे मोहिनी और शिवजी उनके पीछे। और इतना ही नहीं, मोहिनी देवी जानबूझ के उन स्थानों में गई जहां सारे आश्रम थे साधुओं के, उनके बीच में से गुजरी, कुछ ऐसे जप तप कर रहे थे तो वो भी आके खोल के देखे, और क्या देखा, केवल मोहिनी को ही नहीं देखा, दोनों को देखा उनको सिखाने के लिए। किसको शिक्षा देने के लिए? उन ब्राह्मणास को, उन तपस्वी योगीस को भी, हाँ, कि देखो शिव जी की ये दशा है तो हमारी उससे बहुत कठिन दशा हो सकती है, तो इस कारण से कोई चांस नहीं है बचने का। इतना नहीं, इंद्रदेव, अभी इंद्र तो इंद्र से तो रहा नहीं जाता, इंद्र ने जितनी गलतियां की है, मैं एक बार सोच रहा था कि उसका सप्ताह किया जाए, भागो भागो तब मैं इंद्र की आप गलतियां ढूंढो, और अमेजिंग शिक्षा है इंद्र के जीवन से, इतनी घटनाएं हैं, पूरे घंटे घंटे आप इंद्र की चर्चा कर सकते हो। और भगवान केवल अवतरित होते किसके लिए? इंद्र के लिए। इतनी गलतियां करते हैं, इतना तंग करते हैं, फिर भी भगवान होने के लिए अवतरित होते। इसलिए उस श्लोक में बोला गया है, इंद्रारि व्याकुलम लोकम मृडयन्ति युगे युगे एते चांश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान से। उस श्लोक में वो कहते कि ये सारे अंश आदि है, कृष्ण भगवान है, और ऐसे भगवान आते किसके लिए? इंद्र के जो शत्रु है उनका विनाश करने के लिए। उस प्रकार से इंद्र भी आकृष्ट हो जाते हैं। एक उदाहरण आता है ना, अहिल्या, अहिल्या और गौतम के बारे में, कि जब अहिल्या और गौतम ऋषि, अहिल्या एक कर्म मुनि की कन्या थी और जो बहुत ही सुंदर थी वो, और उसके लिए उचित वर ढूंढा जा रहा था, तो जो दो लोग ने कहा कि इससे हमें विवाह करेंगे, वरुण और इंद्रा, ये बिल्कुल लगे पड़े थे। लेकिन कर्म मुनि ने सोचा कि योग्य व्यक्ति होना चाहिए, तो ये योग्य व्यक्ति कौन था? गौतम मुनि थे, गौतम ऋषि, तो उनसे उनका विवाह हुआ। लेकिन इतना अधिक इंद्र कामासक्त था कि गौतम मुनि का वेश धारण करता है, इसलिए भगवान भगवत गीता में कहते पापमानं प्रजयति हेन, कि ये जो काम है हमसे क्या क्या नहीं करवाता, मतलब व्यक्ति सोच नहीं सकता ऐसे ऐसी चीजें वो कर बैठता है, हाँ, काम के प्रभाव में आकर, हाँ, बाद में उसको पता चलता है, हाँ, कि ऐसे इंद्र गौतम बने, गौतम का रूप धारण करके अहिल्या का संग उन्होंने किया। और जब गौतम मुनि आए तो बाहर, जब कुटिया के बाहर थे तो जो सेवक थे उन्होंने कहा, अरे आप तो अंदर भी हो और बाहर भी हो, तो वो गौतम कहते अंदर, तो समझ गए गौतम कि अंदर कौन है, मेरे रूप में है ये जो इंद्र है। तो फिर इंद्र को शाप देते हैं कि आपका आकर्षण भौतिक भोग में है तो सारे शरीर में आपके योनि के छिन्न होंगे, इसलिए उनको सहस्र योनि भी कहा गया। और फिर उनको बहुत घिनौना लगा, उनके शरीर में सारे अंग में वो सारे चिन्ह थे, क्योंकि इंद्र इतने अधिक आकृष्ट थे, तो इंद्र शरण आ गए, उन्होंने कहा मुझे बचाओ, तो उन्होंने कहा गोदावरी में स्नान करो, जिससे आपके उसकी जगह क्या आएंगे, आंखें आएंगी, तो सारे बॉडी में आंखें आ गई, इसलिए उनका नाम क्या पड़ा? सहस्राक्ष या सहस्र नेत्र। सारे शरीर में क्या बने? उनके नेत्र बने या आंखें आ गई। तो इस प्रकार से शास्त्र हजारों हजारों उदाहरणों से हम भरे पड़े हैं, कितने सारे उदाहरण। भागवत में मैं सोच रहा था कि हर अध्याय, हर कैंटो में उदाहरण है। अभी आप ये तीसरा स्कंद पढ़ रहे हैं, अभी इसके बाद केवल यही चर्चा है, अभी फेमस डायलॉग आएगा दिति और कश्यप मुनि, कश्यप मुनि और दिति का जो संवाद है उसमें भी ये सारी शिक्षाएं हैं। ये बार 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 भागवत में इसलिए दी गई है कि हम जो जीव है हमारा स्वभाव क्या है? भूल जाना। हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, गलती भी करते हैं, लेकिन फिर से भूल जाते, इसलिए भागवतम हमारा वो मित्र है जो कंधे में हाथ रखता है। कहाँ हाथ रखता है? कंधे में, और कान में बोलते रहते हैं बारंबार बारंबार, ऐसा श्रीमद् भागवतम है। इसलिए सनातन गोस्वामी ने कहा मदैक बंधु मत संगी, मेरा कोई मित्र है, मेरा कोई संगी है तो वो श्रीमद् भागवतम है। तो ऐसे श्रीमद् भागवतम में ये सारी घटनाएं दी गई हैं। सौभरी मुनि के बारे में हम सोचते हैं, विश्वामित्र मुनि, मेनका के वो जो उदाहरण है, तो ये सारी घटनाएं हमें श्रीमद् भागवतम बताता है एक मित्र के भांति। इसलिए शास्त्र हमें याद दिलाते हैं कि वो व्यक्ति सबसे अधिक मूर्ख है जिसने बहुत अधिक शास्त्रों का, वेदों का आदि अध्ययन करके भी ये समझ नहीं पाया कि भौतिक इंद्रिय तृप्ति के लिए जो भी प्रयास है, चेष्टाएं हैं, वो व्यर्थ है। जब तक व्यक्ति ये नहीं समझा तो उसका जीवन व्यर्थ ही वो गवा रहा है। इस कारण से हर एक व्यक्ति को सावधान होना चाहिए, समझना चाहिए कि ये जो काम हमारे हृदय की बीमारी है, और ये आकर्षण इतना प्रभावशाली है कि कभी कभी हम उसको सहन नहीं कर पाते, अनटॉलरेबल हो जाता है। और प्रभुपाद कहते हैं वही व्यक्ति इसको नहीं समझेगा इस शिक्षा को जो व्यक्ति अंधा है और बहरा है, वो व्यक्ति इसको कभी भी समझ नहीं सकता। क्योंकि जो भौतिक आकर्षण की गांठ है वो कहाँ लग जाती है, हमारे हृदय में लग जाती है, हृदय माहौल हृदय में बन जाती है, जिसके द्वारा हम राम किंकर की बजाय क्या बनते हैं, काम किंकर। एक तो राम किंकर, किंकर मतलब सेवक, तो राम का सेवक होने के बजाय हम काम के सेवक हो जाते हैं। इसी कारण से शास्त्र बारंबार हमें याद दिलाते हैं। बल्कि कोई कह सकता है कि मेरे पास बहुत अच्छा संग है, चैतन्य महाप्रभु के जो संगीत हैं, कृष्णदास, चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा में गए थे कन्याकुमारी के पास केरला में, तो वहां ये कृष्णदास उनके साथ ही था। चैतन्य महाप्रभु रात्रि में सोए एक जगह अपने सेवक के साथ, तो सुबह जब उठे तो उन्होंने देखा उनका सेवक है नहीं, तो जब सुना कि उनका सेवक उनको त्याग कर चला गया है, कहाँ चला गया है, एक ऐसी जाति थी साउथ इंडिया में भट्टाधारी, वो क्या करते थे, अच्छे अच्छे ब्राह्मण युवकों को आकर्षित करते थे, श्री दनत दिखाइया, श्रीयों को दिखाकर और उनको ले जाते थे, अपने ग्रुप में मिक्स कर देते थे और अपनी जो संख्या है वो बढ़ा देते थे। तो चैतन्य महाप्रभु बहुत अधिक सावधान थे। ऐसा नहीं है कि ये केवल सन्यासी या ब्रह्मचारी के लिए है, चैतन्य महाप्रभु कहते चाहे कोई ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, सन्यासी हो, इन सब के लिए, चाहे वो स्त्री है, स्त्री के लिए पुरुष नरक है और पुरुष के लिए स्त्री क्या है, नरक है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं इन एक दूसरे के लिए, एक दूसरे का जो फेस है वो विष का पात्र है, विष भक्षणात् अपि असाधु। और हम जानबूझ के जब अवलोकन करते हैं तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति या ऐसी स्त्री जानबूझ के क्या कर रही है, विष का प्याला पान कर रही है, तो कैसे उसका आध्यात्मिक जीवन बचेगा। इसी कारण से चैतन्य महाप्रभु जब नवद्वीप में थे तो वर्णन आता है कि नवद्वीप में वो ग्रस्त जीवन में थे और सामने से कोई स्त्री भी आते थे तो चैतन्य महाप्रभु अपना सर नीचे करके एक ओर से चलते थे। इसलिए महाप्रभु ने कहा कि आध्यात्मिक उन्नति के लिए हर एक व्यक्ति को ये जो शिक्षा इस श्लोक की है कि किस प्रकार से ब्रह्मा अपने पुत्री से भी आकृष्ट हो जाते हैं, इसको समझते हुए सीखना चाहिए। इवन हम क्या करते हैं, सेवाओं में भी बहाने ढूंढते हैं एक दूसरे से बात करने के लिए, मिलने के लिए। जैसे हमारे एक भक्त है, एक जगह पुणे में थे हम, तो उस समय बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाते थे, तो एक भक्त, एक जो यूथ का भक्त था, वो जानबूझकर माताओं को बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने ढूंढता था कि कहाँ, वो कहता था कि वही लोग लेते हैं किताबें, वही लोग सुनते हैं। तो एक जगह हम कॉलेज में गए तो वहाँ बुक टेबल जब लगाया तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, तो कॉलेज में तो ऐसे चित्र विचित्र वस्त्र पहन के रहते हैं सारे, तो ये जो यूथ का एक डिवोटी था वो कहता है मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन करूंगा। हमने कहा करो, तो उसने लिया, देखा एक दो माताएं आ रही है सामने से कॉलेज की, कृष्णा बुक लिया उन्होंने, कृष्णा बुक लिया और उनको देखते हुए कहा, पहले उनको नीचे से देख रहा था और बोल रहा था ऐसे, पहले नीचे ऐसे देखकर ऊपर जा रहा था, कह रहा था कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी, कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, तो उसके हेड को देख रहा था। तो कहने का तात्पर्य है कि किसी भी प्रकार से हमारा जो मन है हमें क्या करता है, उद्वेलित करता है, और वो सेवा का बहाना ढूंढकर मिक्स होना चाहता है। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु हमें सावधान करते थे। तो भागवतम में तो ऐसे बहुत उदाहरण है, और बल्कि ऐसे ऐसे राजा हैं जिन्होंने ऐसे ऐसे इस ऐसे आकर्षण में गिरे हैं, लेकिन जब उनको पता चला तो वो शोक करने लगे, फिर रोने लगे और वो सोचने लगे कि कैसे मुझसे ये घटित हुआ है। हाँ, ऐसे दो महान राजा हैं जिनका चरित्र बहुत शिक्षाप्रद है, और ये दोनों के बारे में वर्णन आता है श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद में। एक राजा है ययाति और दूसरे राजा थे पुरुरवा। तो महाराज पुरुरवा ऐसे राजा थे, शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि ये जो पुरुरवा है सोम वंश में प्रकट हुए थे। और यदि कोई व्यक्ति, मैं किसी को पूछ रहा था कि अरे प्रभु आप सुबह उठते नहीं हो जल्दी, तो मायापुर हम गए, तो मैंने कहा, वो कहते हैं प्रभु जी मैं तो सूर्यवंशी हूं, जब तक सूर्य नहीं उठता तब तक नहीं उठता। तो ऐसे ऐसी अटकलबाजियां हैं। तो ये सोमवंश के राजा थे, तो मुझे सूर्यवंशी याद आया। तो ये सोमवंश के राजा पुरुरवा थे, इतने फेमस थे। ये इसका वर्णन कृष्ण स्वयं उद्धव को करते हैं भागवतम में। वो कहते राजा पुरुरवा के बारे में कोई सुनेगा वो शुद्ध हो जाएगा। लेकिन ऐसे पुरुरवा जिनका दूसरा नाम अयल भी था, ऐसे पुरुरवा इतने सुंदर थे कि एक बार नारद जब स्वर्ग में गए और इंद्र की जब सभा थी उसमें उर्वशी और बहुत सब कुछ सब लोग बैठे थे, तो नारद इस राजा जो पृथ्वी का राजा है उसके बारे में स्वर्ग में इंद्र की सभा में चर्चा कर रहा था, उनके गुणों का, उनके चरित्र का, उनके सौंदर्य का। तो ये सब सुनते सुनते जो उर्वशी बैठी थी वो आकृष्ट हो गई। उर्वशी ने कहा कि मैं तो इसी राजा से विवाह करूंगी, इसी राजा के साथ अपना जीवन बिताऊंगी, अपना समय बिताऊंगी। तो ऐसी उर्वशी स्वर्ग को छोड़कर कहां चली आती है, पुरुरवा के पास, इस संसार में आती है, इस जगत में आती है, और महाराज पुरुरवा के साथ वो निवास करती है। लेकिन वो कहती है, पुरुरवा ने जब उनको देखा तो पुरुरवा ने कहा कौन ऐसा पुरुष है जो आपके संग में नहीं रह सकता। तो उर्वशी कहती कि मैं आपके साथ तभी रहूंगी, मेरे तीन शर्तें हैं। पहली शर्त है कि मैं केवल घी से बनी हुई वस्तुएं खाऊंगी। राजा ने कहा ठीक है, घी से बनी हुई मैं तो स्वीकार करता हूं। और उर्वशी ने कहा मेरे साथ दो मेमने हैं, भेड़ भेड़, वो दो मेरे पुत्र के समान है, स्वर्ग से मैं उनको लेके आई हूं, वो हमेशा मेरे साथ रहेंगे। और तीसरी मेरी शर्त है मैं कभी भी आपको नग्न नहीं देखूंगी। तो शुक्रदेव गोस्वामी ये वर्णन करते भागवतम में। तो राजा ने कहा ठीक है मैं आपके संग रहूंगा। और फिर जब ऐसा समय बीता, कई वर्ष बिताए, 900 ईयर समथिंग, क्या कई लंबा समय बीता। और उसके साथ जब पुरुरवा अपना समय बिता रहे थे तो वह इंद्र ने सोचा अरे मेरी सभा खाली हो गई है, उर्वशी के बिना तो खाली लग रही है। तो उन्होंने गंधर्वों को भेजा कि आप जाओ उर्वशी को लेके आओ वापस स्वर्ग में। तो गंधर्व जाते हैं और उर्वशी कैसे लाएंगे वापस। तो उन्होंने कहा था कि यदि ये तीन चीजें मेरी फॉलो नहीं हुई तो मैं आपको छोड़ के चले जाऊंगी। तो जब उन्होंने सोचा कि पुरुरवा ने सोचा कि इसको मेरे जीवन से कभी भी नहीं जाने दूंगा, लेकिन जब गंधर्व रात्रि में आए और ये पुरुरवा उर्वशी सो रहे थे और वो दो मेमने वहां बांध के रखे थे, अंधेरे में आकर उन्होंने उस मेमनों को छोड़ा और चुरा के ले जा रहे थे, तो मेमने चिल्ला रहे थे उर्वशी की आंख खुली, उन्होंने कहा अरे मेरे पुत्रों से भी प्रिय ये मेमने कौन चुरा के ले जा रहा है। फिर वो उठी और गुस्से में आकर बोलने लगी, कैसा ये व्यक्ति है, नपुंसक पुरुष है, जिसके संग में मैं रह रही हूँ, जो मेरे मेमनों को भी नहीं बचा सकता, जो स्त्री के समान पूरी गाढ़ निद्रा में सो रहा है, ऐसा इतना गालियां दे देकर उसको बोला। वो पुरुरवा उठ गए, अभी वो राजा थे, पुरुरवा उठते ही उन्होंने अपनी तलवार उठाई और उनके पीछे भागे मेमनों को लाने। तो मेमने जब लाने गए, उन्होंने वस्त्र नहीं पहने थे, वैसे तलवार उठा के भाग गए थे, और जब गए अंधेरे में मेमनों को लेके आए फिर से उर्वशी के सामने, तो गंधर्व ने क्या किया, प्रकाश किया वहां, तो देखा कि पुरुरवा महाराज नग्न है, तो उर्वशी एक क्षण में वहां से भाग गए। जैसे भागे पुरुरवा का हृदय वास्तव में वो ले गए थे। फिर पुरुरवा बहुत अधिक रोने लगे और पूरे पृथ्वी में घूमने लगे, राज्य शासन सब छोड़कर विलाप करने लगे, और विलाप करते करते कुरुक्षेत्र पहुंचे। वहां देखा ये उर्वशी वहां है सखियों के साथ, वहां ब्रह्म सरोवर से पानी लेके कुछ स्नान आदि कर रही है। तो फिर वो कहने लगे, अहो तिस्ता, अरे रुक रुक जरा है उर्वशी, आप बिना बात किए चले गए, एक कुछ समय के लिए मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, एक मिनट रुको, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। तो ये सब चर्चा भगवान कृष्ण किसको सुना रहे हैं, उद्धव को सुना रहे हैं। भगवान कह रहे हैं उद्धव को कि हे उद्धव, ऐसे जो महाराज पुरुरवा हैं, दुख से इतने चिल्ला रहे थे और कह रहे थे कि कितनी मेरी ये जो पत्नी है निष्ठुर है, हाँ, तो फिर कहते हैं कि फिर जो शोक पुरुरवा ने व्यक्त किया है वो वास्तव में सारे जीवों के लिए बहुत शिक्षाप्रद है। जब कुछ घटित होता है फिर हम अनुभव करते हैं और शोक व्यक्त करते हैं, फिर हम प्रोग्रेस करने लगते हैं। तो वैसे ही पुरुरवा के जीवन से ये घटना घटी, फिर पुरुरवा को समझ में आया कि मैं कितना मूर्ख था, पागल था। हाँ, तो पुरुरवा कहते हैं, अहो मे मोह विस्तार काम कल्मश चेतसा, वो कहते कि देखो मेरे मोह की कोई सीमा नहीं है, कि किस प्रकार से मेरा जो हृदय है काम वासना से दूषित हो गया था, और मुझे ये भी पता नहीं चलता था कि कब सूर्य उदित हो रहा है और कब अस्त हो रहा है। मैंने अपने जीवन के हजारों हजारों साल बिता दिए हैं, दिन बिता दिए हैं, और मैं जो सारे राजाओं में श्रेष्ठ था, एक जो उर्वशी स्त्री है उसके हाथ का क्या बना था, मैं कठपुतली बना था। तो ऐसे रोते हुए वो चिल्ला रहे थे और कह रहे थे कि मेरी स्थिति तो उस गधे के समान हो गई थी, जो गधे लाते मार मार के गधे के चेहरे को क्या करती है, लुह लुहान कर देती है। ऐसे शब्द पुरुरवा अपने शोक में व्यक्त कर रहे थे। वो कह रहे थे किम विद्या किम तपसा किम त्यागेन श्रुते नवा, वो कहते कि पढ़ाई लिखाई इतनी जो की है उसका क्या लाभ यदि मैं इसमें गिर जाता हूं, और मेरे वैराग्य का क्या लाभ, और मैंने धार्मिक शास्त्रों का अध्ययन करने का क्या लाभ, मेरा एकांत में निवास करने का क्या लाभ, मौन रखने का क्या लाभ, यदि ये जो स्त्री है मेरे मन को चुरा लेती है। वो इसी प्रकार से स्त्री का भी मन या हृदय कोई पुरुष चुरा लेता है, तो ये दोनों के लिए है। तो इस प्रकार से महाराज पुरुरवा जब ऐसा शोक कर रहे थे और रो रहे थे, तो फिर उनको समझ में आ गया, उन्होंने कहा कि इस भयानक रोग से मुझे इस संसार में कोई नहीं बचाने वाला। फिर वो एक शब्द बोलते हैं, वो कहते हैं कुंचल्या परतम चित्तम कोन नन्मो मोचितम प्रभु आत्मरामेश्वर मृत्ये भगवंतम अधोक्षजम। वो कहते हैं कि मेरी चेतना को ये जो पुंचली है, पांच प्रकार की स्त्रियां होती हैं, पद्मिनी, पुंचली, ऐसे अलग अलग प्रकार हैं पुराणों में, तो उनमें से वो कहते हैं जो पुंचली ना प्रकार की जो स्त्री है उसने मेरी चेतना को चुरा लिया है, अभी कौन बचाएगा मुझे। तो कहते कि केवल एक ही व्यक्ति मुझे बचा सकते हैं, जो आत्माराम मुनियों के भी स्वामी है, और वो कौन है, कृष्ण है, जो मेरी रक्षा कर सकते हैं, उनके अलावा कोई और नहीं बचा सकता। फिर वो सोचने लगे कि कैसा मैं मूर्ख व्यक्ति हूं कि ये जो शरीर इतना गंदा है जिससे सदैव दुर्गंध निकलती है, शरीर से कोई अच्छी चीज निकली है, सुबह उठते ही नाक से, कान से, यहां वहां से सारे नाइन होल्स हैं, उसमें से गंदी गंध निकलता है बाहर, सुबह एक घंटा उसी में लगता है, उसके क्लीनिंग करने में, सफाई करने में, रूम सफाई में इतना टाइम नहीं लगता। आपने रूम सफाई की कभी? डिवोटिस करते हैं हमारे ब्रह्मचारी हर एक अपने अपने रूम, 5 मिनट में हो जाता है, लेकिन शरीर सुबह उठो मंगल आरती 3 बजे तो देखा कि 4:30 तो पहुंच रहा है वक्त, तो क्यों सफाई में लगा हुआ था, इतनी गंदगी है, कोई अच्छी चीज। वो कहते कि इतनी गंदगी, आखिर ये दूषित शरीर क्या है, इतना गंदा तथा दुर्गंध से भरा हुआ है, मैं एक स्त्री के शरीर की सुगंधि तथा सुंदरता से आकृष्ट हुआ था, किंतु आखिर वे आकर्षक स्वरूप क्या है, वे माया मोह द्वारा उत्पन्न छद्म आवरण है। इस प्रकार से ऐसी हजारों हजारों जो बातें हैं वो बोलते हैं जो गुरु रवा है, और वो कहते हैं कि केवल कृष्ण ही मुझे बचा सकते हैं, उनके अलावा मेरी जो चेतना है उसको कोई ठीक नहीं कर सकता। तो इसलिए ये सबसे बड़ी भौतिक जगत में बीमारी है, हार्ट डिजीज। आजकल हार्ट अटैक सबको होते हैं, 40 साल में हार्ट अटैक से मर जाते हैं, लेकिन उससे भयानक अटैक यह है हृदय रोग। और ये हृदय रोग का वर्णन गीता के 3rd अध्याय में भगवान ने कूट कूट के किया है, शुरुआत में 3rd अध्याय में इतना कुछ बोल दिया। भगवान कहते काम यश क्रोध यश रजगुण समुद्भवा, ये रजगुण का साइड इफेक्ट है काम। और फिर कहते आवृतम ज्ञान में ज्ञानिना नित्य वैरिना, कोई कितना भी बड़ा ज्ञानी हो हमारे वैरी जो शत्रु है कुछ समय के लिए होते फिर मित्र बन जाते, लेकिन एक ऐसा है जो हमेशा हमेशा के लिए शत्रु है, वो कौन है, भगवान कहते नित्य वैरिना। और फिर भगवान कहते हैं इंद्रियानि मनोबुद्धि अधिष्ठान मुच्यते, और ये नित्य वैरी कहाँ रहता है, मन में, इंद्रियों में, बुद्धि में। फिर भगवान कहते उसको आप निकालो, जही शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम, भगवान कहते कि ऐसे शत्रु का विनाश करो। कैसे विनाश करें, तो भागवत में 3 चीजें दी हैं इस शत्रु को परास्त करने के लिए, 3 चीजें, और वो निश्चित है, यदि हम उसको नहीं करेंगे दुनिया भर की चीजें हम जो मर्जी करें, जैसे व्यासदेव ने बहुत कुछ किया, लगा लग रहा था कि वो सब कुछ स्पिरिचुअल है, व्यासदेव ने पुराण लिख दिए, महाभारत दे दिया, बहुत सारी चीजें की, लेकिन फिर सरस्वती के नदी के तट पर बैठ के दुखी थे, लेकिन एक चीज नहीं की थी उन्होंने। तो उसी प्रकार से इस महान शत्रु का पराजय करना है, उसको परास्त करना है, तो भागवत हमें 3 चीजें बताता है। और इसीलिए भगवत गीता में कृष्ण सबसे पहले हमें प्रेरित करते हैं, भगवान कहते हैं यही संस्पर्श जा होगा दुख एवते अद्यंतवंत कहते हैं नतेषु रमते गुरा। 5वें अध्याय में कहते हैं कि ये जो स्पर्श से उत्पन्न सुख है वो दुख देने वाला है, वो समय हमें लगता है कि सुख है लेकिन निश्चित रूप से वो दुख में परिवर्तित होगा, इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति उसमें रमन नहीं करता। तो ऐसे विनाशशील इस शत्रु को परास्त करना है तो उसके लिए 3 चीजें श्रीमद् भागवतम हमें बताता है। और सबसे पहली चीज है कृष्ण को प्रार्थना करना, सबसे इंपॉर्टेंट। हम देखते हैं कि यदि कोई सिंसियर है इस हृदय रोग से दूर होने के लिए और हम भगवान को प्रार्थना करें अपने इस हृदय की बीमारी के लिए, हाँ कृष्णा आप मेरे इस हृदय रोग को थोड़ा निकाल दो, मेरे हृदय से बाहर कर दो, तो भगवान तीव्रता से करते हैं। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर ने हमें प्रार्थना सिखाई है, कौन सी प्रार्थना है, गोपीनाथ मम निवेदन सुनो। हाँ वो जो तीन सॉन्ग्स हैं वो वास्तव में एक काम को निकालने के लिए प्रार्थना है भगवान के चरणों में। हाँ भगवान कृष्ण को जब हम प्रार्थना करते हैं, और वैसे ही प्रार्थना प्रहलाद महाराज ने की। प्रहलाद महाराज ने कुछ नहीं मांगा भगवान से, जब भगवान नरसिंह देव प्रकट हुए तो उन्होंने कहा प्रहलाद तुम्हारा डिवोशन तुम्हारा समर्पण ये सब देखकर हाँ मैं तो आग्रस्त हो गया हूं आपके प्रति। प्रहलाद तुम जो चाहे वो मांग सकते हो। प्रहलाद कहते हैं मैं व्यापारी नहीं हूँ, बिजनेसमैन नहीं हूँ कि मैं कुछ सेवा करूंगा उसके बदले कुछ मांगूंगा, नहीं नहीं बहुत फोर्स किया तो प्रहलाद ने कहा ठीक है कुछ देना है तो एक चीज दे दो कि मेरे यदि दाशा में मैं कामान वरदेशु वरद ऋषभ हे वरों को देने वाले सर्वश्रेष्ठ कृष्ण आप कुछ देना ही चाहते हो तो एक चीज मुझे दे दो। क्या दे दो? हाँ मेरे हृदय का ये जो काम है इसको क्या कर दो, मूल से समूल से निकाल के उखाड़ के फेंक दे दो, जो सारे बंधनों की क्या है जड़ है, सारे दुखों की जड़ है। तो इस प्रकार से वो प्रार्थना करते हैं। हाँ प्रार्थना कृष्ण के लिए और प्रार्थना साधु गुरु और वैष्णव के लिए। इसलिए हमें आचार्यों ने प्रार्थनाएं सिखाई हैं, वो है वैष्णव ठाकुर आदि प्रयास। हम देखते हैं रामानुजाचार्य अपने एक शिष्य को मुक्त करते हैं इस कामकार से। तो फर्स्ट स्टेप है कि रोज भगवान कृष्ण को प्रार्थना करें और स्पेसिफिक प्रेयर्स हम चांट करें। कुछ नहीं हमें पता तो अपने शब्दों से बोले भगवान को, कृष्णा बहुत कठिन दिन जा रहे हैं मेरे आजकल। हमें सबको होते हैं ना आजकल कुछ हमारा अप डाउन चलता रहता है, भगवान आजकल बहुत कठिन दिन है, आप मुझे रक्षा करो, मेरे हृदय से इस काम कर को हटा दो। और दूसरी चीज क्या है, कंटिन्यूअसली एकाग्र चित्त होकर श्रीमद् भागवतम को सुनना और भागवतम का गंभीरता से अध्ययन करना, ये परम आवश्यक है यदि हम सीरियसली और सिंसियरली चाहते मुक्त होना। भागवतम का आश्रय लेना ही इससे मुक्त होने का सरल साधन है। इसलिए कुछ भी हो जाए रोज भागवतम को पढ़े बिना नहीं रहना है मुझे, चाहे कितना है, क्योंकि असली व्यस्तता क्या है, 24 आवर्स कीर्तन ये सदा हरे, ये असली व्यस्तता है। और उसमें भी हमारे पास प्रभुपाद एक तात्पर्य में लिखते हैं कि परीक्षित महाराज बहुत भाग्यशाली थे, उनके पास भागवतम सुनने के लिए 7 दिन थे। प्रभुपाद कहते हैं कि हमारे पास 7 मिनट भी नहीं है भागवतम के लिए, कितने दुर्भाग्यशाली हैं हम आते सुनने के लिए, उसमें भी बहुत कुछ चलता रहता है दिमाग में। और घर में भागवतम प्रभुपाद ने दिया है, वो भागवतम सेट ऐसे रहता है, इतनी बड़ी बड़ी किताबें देख के खोलने का मन ही नहीं करता, ऐसा लगता है कि ये क्या है, बड़ी बड़ी आंखें करके रोज देखता है व्यक्ति उसको, और कभी कभी धूल झाड़ कर फिर से रख देता है। लेकिन नहीं, भागवतम तो छाती में लगाने के लिए है, भागवतम हृदय में लगाओगे तो हृदय रोग क्या होगा गायब हो जाएगा, नहीं तो बना रहेगा अंदर। तो इसलिए कुछ भी हो, चाहे स्त्री हो पुरुष हो दीक्षित हो अदीक्षित हो ब्रह्मचारी हो गृहस्थ हो सन्यासी हो, कोई इससे मुक्त नहीं है, हर एक व्यक्ति इससे क्या है परेशान है काम विकार से। इसलिए क्या करना है, भागवतम को सुनना है। और ये मैंने बोल रहा हूं, सूत गोस्वामी रिकमेंड कर रहे हैं सेकंड कैंटो में, वो कहते हैं पिबन्ति भगवत आत्मनाम सतां कथामृतं श्रवण पुटेषु संवृतं पुनान्ति ते विषय विदूषिताशयं व्रजन्ति तच्चरण सरुराहान्तिकम्। वो कहते पिबन्ति ये भगवत आत्मनाम कथा, भगवान का आत्मा कौन है, भक्त है। तो कहते भगवान और भक्त की ये जो कथा तो कोई भक्त रोज पीता है, अभी कई बार भागवत पढ़ते तो समझ में आया ना आए, लेकिन पढ़ना है मुझे। वो कहते जो रोज पीता है भक्तों के संगति में कथामृतम श्रवण कृतेश समृतम, हाँ समृतम मतलब भर भर के पीता है, हाँ जूस होता है कुछ होता है जो फिस्ट में हम क्या करते पूरा भर भर के लेते हैं, हाँ शुभ बड़ा कर चाहिए तो भर भर के लेंगे, हाँ भरेंगे प्लेट को ग्लास को दो चार ग्लास। तो वैसे वो कहते हैं श्रवण ये कर्ण क्या है, वो प्याले हैं, ये प्यालों से ऐसे भर भर के डालो और उससे पियो समृतम पुनंतिते विषय विदूषिता आशयम, जो इच्छा है कौन सी भौतिक भोग करने की जो इच्छा जो बहुत ही गंदी है दूषित बोला यहां दूषित इच्छा है ये क्या हो जाएगी पुनंति शुद्ध हो जाएगी व्रजंती, और फिर ये जब शुद्ध हो जाओगे तो व्रजंती चले जाओगे भगवान के चरण कमलों की ओर भगवान के धाम। तो इसलिए वो कहते हैं तो इसलिए दूसरी चीज है और तीसरी चीज है क्या करना भगवान के जो नाम है उसको गंभीरता से उच्चारण करना और भगवान के नामों का प्रचार करना, जाने देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। हाँ इसलिए ये चीज किसने बोली थी चैतन्य महाप्रभु ने कूर्म ब्राह्मण को और वसुदेव वासुदेव इन दोनों को बोली थी। तो जो वासुदेव जो विप्र था उसको कुष्ठ रोग हो गया था, चैतन्य महाप्रभु ने जब उसका आलिंगन किया तो वह सबसे सुंदर पुरुष बना इस संसार का। फिर उनको एक चीज आ गई, उन्होंने बोला कि मैं अभी बहुत सुंदर हो गया हूं, मेरे अंदर घमंड आ जाएगा और फिर विषयों को भोगने के लिए लालसा होगी क्योंकि अभी मैं सुंदर हो गया हूं, तो मैं तो वैसे ही कुष्ठ रोगी रहना चाहता हूं, उससे अच्छा वही जीवन है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा नहीं, एक चीज करोगे तो इस चीज से विषयों से प्रभावित नहीं होगे। वो क्या है, महाप्रभु ने कहा मेरे नामों का उच्चारण करना और इस नामों को दूसरों को प्रचार करना, यदि आप गंभीरता से ये करते हो तो आप विषयों से कभी भी प्रभावित नहीं होंगे। तो ये चीज चैतन्य महाप्रभु उनको बताते हैं। तो इस प्रकार से श्रीमद् भागवतम वो हमारा असली ट्रू फ्रेंड है, किससे बहुत क्लोज होना है आपको, किससे बहुत अधिक नजदीकी बनानी है तो किससे बनाओ श्रीमद् भागवतम से, और उसके असली उदाहरण सनातन गोस्वामी है। सनातन गोस्वामी ने ग्रंथ लिखा है कृष्ण संहिता, अभी बीबीटी ने पब्लिश किया है, नहीं कृष्ण लीलास्तव, तो उसमें भागवतम की बहुत अमेजिंग प्रार्थना लिखी है, उसी में ये बोलते हैं वो तुम्हें एक बंधु आप ही मेरे असली मित्र हो संगी हो गुरु हो। हाँ तो इस प्रकार से ये श्रीमद् भागवतम असली मित्र हैं जो हमें हमारी कमियां बोलता भी है कभी मीठे शब्दों में कभी कठोर शब्दों में और सॉल्यूशन भी देता है। तो ये जो आज का श्लोक है वाचम दुहितरम तन्वी, हाँ वाचम मीन्स वाणी वाक वाक नाम की जो पुत्री है ऐसे कहते हैं सरस्वती, दुहितरम मतलब पुत्री, तन्वी मीन्स शरीर से, क्यों किसके शरीर से स्वयंभू के शरीर से जो ब्रह्मा है, स्वयंभू के शरीर से जो उनकी पुत्री प्रकट हुई थी उस पुत्री को देखकर काम विकार जागृत हो गया, हरन्ति मन ब्रह्मा का मन क्या हो गया उसके प्रति आकृष्ट हो गया, अकामो छटन उस पुत्री के हृदय में कोई काम नहीं था हाँ लेकिन इन्हीं के हृदय में था। तो ये उदाहरण इसलिए हमें दिया है श्रीमद् भागवतम में भी कि हम ये स्मरण रखें, हम इस भ्रम में ना रहें कि मेरे साथ नहीं होगा, हमारे साथ घटित होता है या हुआ है हाँ? तो हमें ये नहीं समझना चाहिए कि मेरे साथ नहीं होगा मैं तो इससे क्या हो निर्लिप्त हूं या आगे नहीं होगा, इसलिए हमें हमेशा विनम्र बनते हुए विनम्र रहकर आध्यात्मिक प्रैक्टिस करते हैं और इन तीन चीजों पर फोकस करते हैं। सबसे पहले कृष्ण को प्रेरित करते हैं गुरु वैष्णव साधु, और दूसरा है श्रीमद् भागवतम का गंभीरता से और बहुत हाथ धो के पीछे लगता है व्यक्ति वैसे भागवतम में घुस जाना, और तीसरा है क्या करना, भगवान के नामों का चांट करना। कब तक चांट करना, मैं आजकल सबको बोलता हूँ कृष्णा प्लीज अलाउ मी टू चांट माई 16 राउंड्स बिफोर 7। हे कृष्णा आप क्या करो, मुझे अलाउ करो कि मैं अपनी माला कब खत्म करो, 7 से पहले, 7:01 नहीं, 7 से पहले आप करेंगे, प्रयास करेंगे और श्रीमद् भागवतम में घुसेंगे। दो चीजें, भागवतम का अध्ययन, नाम का आश्रय, तो फिर संभावना है भगवान की कृपा होगी तो बचने की, और हृदय का जो बीमारी है हृदय रोग उससे दूर होने की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये सारी चीजें मैं अपने लिए बोल रहा था ताकि मुझे याद रहे श्रीमद् भागवतम की विशेष शिक्षाएं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम के श्रील प्रभुपाद की मिलाए गौर।